I know that the newly married couples are available here, the Maxeline and Elizabeth here. So I thought something I speak on marriage again.
आज क्योंकि शादीशुदा नए शादीशुदा जोड़े हैं यहाँ पे Maxeline और Elizabeth, उनके लिए शादी के संबंध में भाई कुछ बोलना चाहते
हैं. Of course, others also recently got married. People are here, so it is good to think about the family.
इसलिए कई और भी जोड़े हैं यहाँ पर, इसलिए अच्छी बात है कि एक परिवार के बारे में हम सोचें.
Some are expecting to enter into the married life, so the instructions are valuable for them also.
और जो विवाह करने की सोच रहे हैं उनके लिए भी ये बातें सिद्ध हैं.
As somebody said, the marriage is something like that. Those who are married, they want to get out of it. Those who are married, not married, they want to get in. That is the problem with the marriage.
किसी ने ऐसा कहा है कि शादी वो चीज है जो शादीशुदा है वो छुटना चाहते हैं और जो नहीं है वो शादी में बनना चाहते हैं.
But Bible says very clearly that marriage is honorable in all.
परंतु वचन ये कहता है कि शादी सब चीजों में उत्तम, सब में उत्तम है.
Hebrews chapter 13 verse 4 we read that.
इब्रानी के पत्र 13वां अध्याय 14वीं आयत में ऐसा पढ़ते हैं.
Marriage is honorable in all.
शादी सब में सर्वोत्तम.
We are very familiar with that verse.
वो उस वचन के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं.
Why it is honorable?
क्यों वो तो उत्तम है?
That also we know it is because it is not the man's idea, it is the God who instituted the marriage.
ये इसलिए है कि पहली शादी जो है वो परमेश्वर ने नियुक्त की थी, परमेश्वर की तरफ से नियुक्त हुई थी.
So that is why it is a honorable institution.
इसलिए वो उत्तम है.
There are three institutions of God we see in this earth.
तीन चीजें जो परमेश्वर ने स्थापित की इस दुनिया में हम देखते हैं.
द फर्स्ट वन इज द मैरिज.
पहला शादी है.
द सेकंड वन इज द ह्यूमन गवर्नमेंट.
और तीसरा जो गवर्नमेंट है आदमियों की वो.
एंड द थर्ड वन इज द चर्च.
और तीसरी जो है वो कलीसिया है.
एंड वी सी दैट द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन विद इज अ मैरिज इज इंस्टीट्यूटेड बिफोर द सिन एंटर्ड इनटू द वर्ल्ड.
और ये देखते हैं कि जो पहला जो शादी है उसकी स्थापना पाप के आने से पहले हुई थी.
दैट इज व्हाई इट इज ऑनरेबल.
इसलिए वो उत्तम है.
And if you look into that, the first institution and the remaining two, we see that there is a close link between these three.
और जब हम पहली शादी की जो चीज है और बाकी दो में हम एक ध्यान से देखेंगे तो हम इसमें एक रिलेशन रिश्ता देखते हैं.
इफ यू सी द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन इफ मैरिज इज ऑल राइट द ह्यूमन गवर्नमेंट और द सोसाइटी विल बी ऑल राइट.
और अगर हम देखते हैं कि शादी अगर बराबर है तो सरकार जो मनुष्यों की है वो भी अच्छी हो, ठीक होगी.
देयर विल बी पीस इन द सोसाइटी.
वहां पे दुनिया में शांति होगी.
सो द पीस शुड स्टार्ट फ्रॉम होम.
इसलिए शांति का जो आरंभ है वो घर से होना चाहिए.
सेम वे वी सी दैट इफ देयर इज अ पीस एट होम.
और इसी तरह हम देखते हैं कि घर में शांति है.
देयर विल बी पीस इन द असेंबली इन द चर्च ऑफ गॉड.
और परमेश्वर के कलीसिया में भी शांति होगी.
सो वी सी दैट दिस ऑल दिस थ्री आर लिंक्ड टुगेदर.
इस तरह हम देखते हैं कि तीनों में कोई ना कोई संबंध है.
सो दैट इज व्हाई इट इज अ हॉनरेबल इंस्टीट्यूशन.
इसलिए ये उत्तम है.
इट इज बिफोर द सिन एंटर्ड इट स्टार्टेड.
इसलिए क्योंकि ये पाप के आने से पहले आरंभ हुई.
नाउ व्हाई स्क्रिप्चर सेज इट इज हॉनरेबल इन ऑल.
क्यों ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है कि सब में उत्तम है.
नॉट ओनली इन बिलीवर्स बट इवन अमंग द अनबिलीवर्स इट इज ऑनरेबल.
विश्वासियों और अविश्वासियों दोनों में
इट इज ऑनरेबल टू हिंदू मुस्लिम्स क्रिश्चियंस एवरीवन.
और सब धर्म के लोगों में ये उत्तम है.
द रीजन इज दैट इट इज इंस्टीट्यूटेड इन रिलेशन विद द क्रिएशन ऑर्डर.
क्योंकि इसकी स्थापना जो जिस प्रकार सृष्टि का निर्माण हुआ था उसके द्वारा हुई.
When God was creating at that time it was instituted.
जब परमेश्वर निर्माण कर रहा था तब इसकी स्थापना हुई.
So it is applicable to all his creatures, all human beings.
और सब मनुष्य में वो लागू होती है.
That is why the Hebrew writer says that marriage is honorable in all.
इसलिए इब्रानियों की पत्री लिखने वाला कहता है कि सब में ये उत्तम है.
And we should understand what God intended behind this institution.
हमें ये सोचना है कि परमेश्वर का क्या सोच थी इस चीज को स्थापित करने में.
वी सी द डिटेल्स अबाउट द मैरिज इन चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 ऑफ जेनेसिस.
उत्पत्ति की पहली और दूसरी किताब में उसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं शादी के बारे में.
स्पेशली जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 18-25 इज द डॉक्यूमेंट दैट स्पीक्स अबाउट द डिटेल्स अबाउट द मैरिज.
और शादी के बारे में खास जो विवरण है वो हमें दूसरे अध्याय उत्पत्ति की किताब 18-25 में पढ़ते हैं.
आई कैन कंसिडर दिस अ वंडरफुल मैनुअल ऑफ द मैरिज देयर.
और शादी का एक ग्रंथ के बारे में हम ये पढ़ सकते हैं.
एंड वी सी दैट ऑल द इंस्ट्रक्शन नीडेड फॉर द फैमिली लाइफ इज गिवन देयर.
और जो भी हमें अपने शादीशुदा जीवन में जो चाहिए वो सब वहां पर लिखा गया.
सो टुडे आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर अटेंशन अबाउट टू थ्री थिंग्स रिलेटेड विद द फैमिली लाइफ.
आज भाई दो तीन चीजें शादी के बारे में बताना चाहते हैं.
व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट इन द साइट ऑफ गॉड.
क्यों परमेश्वर की दृष्टि में ये महत्वपूर्ण है.
And how we can be a successful in our family life.
और अपने पारिवारिक जीवन में हम कैसे सफल हो सकते हैं.
See, whenever we interpret the Bible,
जब भी हम बाइबल के को पढ़ते हैं,
there are so many principles of interpretations are there.
और उसके कई principles होते हैं.
We cannot interpret as we like it.
और उसका अध्ययन हम अपने मन मर्जी से उसका वचन नहीं सोच सकते.
The principle of interpretation of the Bible is this one.
और पहला जो principle है वो ये है.
That is one of the interpretation principle. That is when a word appears for the first time, that passage and that word is very significant.
और उसमें ऐसा है कि जो शब्द जो जहां जिस वाक्य में जिस जगह में पहली बार इस्तेमाल होता है वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है.
For example,
example के लिए
come, the word come.
आओ ये शब्द.
Where it appears first time you note down.
ये पहली बार कहां इस्तेमाल किया गया उसको देखिए.
The context and the background of that particular reference is very much applicable throughout the Bible.
और वो जिस प्रकार जिस परिस्थिति में और जिस जगह पर इस्तेमाल हुआ वही परिस्थिति सारी वचन में इस्तेमाल लागू होती.
In Genesis, in relation with the Noah, we read about God is saying, "Come."
और नोआ के विचार उसमें हम पढ़ते हैं कि वहां पर परमेश्वर कहता है कि आओ.
आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द आर्क
जब वो पूरे नाका बना लेता है.
गॉड इज कॉलिंग नोआ एंड फैमिली एंड सेइंग दे कम इनसाइड इनसाइड द आर्क. इट्स द इनविटेशन ऑफ सेल्वेशन.
और तब नोआ और उसके परिवार को परमेश्वर कहता है आओ अंदर आओ कश्ती के अंदर आओ नौका के अंदर आओ.
सो वी सी दैट गॉड इज सेविंग द नोआ एंड फैमिली इन्वाइटिंग दम इन टू द आर्क.
और परमेश्वर उनको नौका के अंदर बुला के हम देखते हैं कि उनको बचाता है.
सो वी सी दैट द वर्ड कम इज एप्लीकेबल ऑल थ्रू आउट द स्क्रिप्चर इन द सेम सेंस.
और इसी प्रकार के जो तत्व है वो आओ शब्द के बारे में हम पूरे वचन में देखते हैं.
इज द डिवाइन कॉल फॉर मैनकाइंड.
और ये परमेश्वर की तरफ से दैवीय एक बुलाहट है.
सो मेनी वन फर्स्ट टाइम विच अपीयर्स यू नोट डाउन इज वेरी इंटरेस्टिंग.
और पहली बार जो शब्द जहां पर इस्तेमाल होता है उसको आप ध्यान से पढ़िए.
इफ दैट इज करेक्ट वी हैव टू लुक इनटू दैट द फर्स्ट टाइम वेयर द वर्ड मैरिज अपीयर्स.
और हमें अगर ये सही है तो हमें देखना है कि पहली बार जो शादी शब्द है वो कहां हुआ.
एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट गॉड इंटेंडेड बिहाइंड दैट.
और उसके पीछे परमेश्वर का क्या मकसद था.
ऑफ कोर्स मैरिज इज रेफर्ड इन जेनेसिस चैप्टर 1.
विवाह पहले अध्याय की उत्पत्ति की किताब में ही
है. गॉड क्रिएटेड दम एज अ मैन एंड मैन एंड वीमेन.
हम पढ़ते हैं कि उसको मनुष्य और औरत के द्वारा परमेश्वर ने निर्माण किया.
गॉड इज ब्लेसिंग दम. वी रीड द
और वहां पे उनको वरदान भी दिया ये हम पढ़ते हैं.
इन चैप्टर 2 वी हैव ए डिटेल अकाउंट ऑफ दैट इवेंट अगेन.
और फिर उसी चीज के बारे में विस्तार से दूसरे अध्याय में लिखा है.
बट इन दिस टू चैप्टर्स और इन द फॉलोइंग चैप्टर्स ऑल्सो वी डोंट रीड द वर्ड मैरिज देयर.
और परंतु इन सब जो वाक्य है उसके बाद में उधर हम शादी शब्द नहीं पढ़ते.
नो रेफरेंस ऑफ द वर्ड मैरिज इन चैप्टर 1, 2, 3, 4 एनीथिंग वेयर वी डोंट सी दैट.
पहले दूसरे तीसरे या चौथे अध्याय में भी विवाह शब्द नहीं आता.
इवन दो द मैरिजेस आर देयर इन दैट चैप्टर.
और जब भी यहां पर शादियां उन सब अध्याय में है.
द फर्स्ट रेफरेंस ऑफ द मैरिज कम्स इन जेनेसिस चैप्टर 19.
पहला शब्द जो जहां पर विवाह यूज हुआ है वो 19वें अध्याय उत्पत्ति के में आता है.
जेनेसिस चैप्टर 19 वर्स 14 इज द फर्स्ट रेफरेंस अबाउट द वर्ड मैरिज इन द बाइबल.
उत्पत्ति की किताब 19वें अध्याय
19 वर्स 14
और 14वीं आयत में पहली बार विवाह शब्द आता है.
नाउ ऑफ कोर्स इट इज रिलेटेड विद द लोत इट इज मेंशन.
और वो लूत के बारे में है.
लोत व्हेन दे टॉक्ड टू हिज सन इन लॉज हु वर अबाउट टू मैरी हिज डॉटर्स.
वो लूत ने अपने दामादों को जो उसकी बेटियों से सगाई करने वाले थे.
सो देयर वी सी द वर्ड मैरिज इज अपीयरिंग.
वहां पर हम शादी शब्द पढ़ते हैं.
बट इफ यू लुक इन टू द वर्ड इन इट्स ओरिजिनल लैंग्वेज लैंग्वेज
इब्रानी भाषा में जब हम उस शब्द को पढ़ते हैं
द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग.
और उस शब्द का मतलब जो है
द वर्ड विच इज यूज देयर
वो जो शब्द वहां यूज किया गया है इस्तेमाल किया
रिसीव to one another. That's the meaning of receiving. That's the meaning.
उसका मतलब है एक दूसरे के पास आना.
To receive or accept.
और एक दूसरे को accept करना.
Or to get a person.
और एक या एक किसी व्यक्ति को लेना.
So we see that the meaning of the marriage is referred there.
और विवाह का जो मतलब है वहां पर हमें सामने आता है.
एंड दिस दैट सीम्स टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट वर्ड इट एट द टाइम ऑफ मैरिज वन पर्सन इज रिसीविंग अनदर पर्सन इन टू द लाइफ.
और वहां पे बहुत जरूरी चीज हमें पता लगती है कि शादी में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनाता है.
इन द मैरिज सेरेमनी वी सी दैट इज व्हाट दे डिक्लेयर.
और शादी का जो रस्म है उसमें भी यही दर्शाया जाता है.
दैट इज व्हाट दे मेक अ कोवेनेंट ईच अदर.
और यही एक वाचा एक दूसरे से बांधते हैं.
फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई एक्सेप्ट यू एज माई वाइफ.
आज से मैं तुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं.
एंड टुडे ऑनवर्ड्स आई एक्सेप्ट यू एज माय हस्बैंड. दे आर पब्लिकली मेकिंग ए डिक्लेरेशन दे एक्सेप्ट ईच अदर.
और संसार के सामने वो पूर्ण रूप से ये दर्शाते हैं कि एक दूसरे को वो अपना रहे हैं.
इट इज ए पब्लिक प्रोक्लेमेशन एंड पब्लिक कवेनेंट दे आर मेकिंग.
और दुनिया के सामने ये वाचा वो बांध रहे हैं.
सो दैट मैरिज मीन्स एक्सेप्टिंग वन अनदर और रिसीविंग वन अनदर.
शादी का मतलब है कि एक दूसरे को अपनाना.
इट इज जस्ट नॉट रिमेन ओनली इन द वर्ड.
सिर्फ ये शब्दार्थ रूप में नहीं होना चाहिए.
इट हैज इट्स प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस इन द डे टू डे लाइफ.
हर दिनों दिन जीवन में भी इसका मकसद होना चाहिए.
When we say that I receive you in my life,
जब हम कहते हैं कि मैं तुझे अपने जीवन में अपनाता हूँ.
I should practice, I should show that I received you.
हमें पूर्ण दिखाना है कि मैं तुझे सच्ची में अपना रहा.
In the course of time, in the married life, they have to show each other that they received one another.
और आगे चलकर अपने वैवाहिक जीवन में एक दूसरे को ये दिखाना है कि एक दूसरे को लिया है अपना.
We have a best example for that, our Lord Jesus Christ.
और सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो प्रभु यीशु मसीह किसका.
हाउ वी कैन रिसीव.
किस तरह से अपनाना है.
एंड व्हाई वी शुड रिसीव. दीज आर द टू क्वेश्चंस वी हैव टू आंसर.
क्यों अपनाना है ये दो प्रश्न का उत्तर हमें
एंड द आंसर इज गिवन बाय द लॉर्ड हिमसेल्फ.
और प्रभु ने इसका उत्तर दिया है.
लेट अस रीड रोमियो चैप्टर 15 वर्स 7.
रोमियो की पत्री 15 और 17 में 7 में हम देखते हैं.
देयर वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हाउ ही रिसीव्ड अस.
किस वहां पर एक उदाहरण है कि किस तरह प्रभु ने हमें अपनाया.
देयर वी सी द पॉल इज इंस्ट्रक्टिंग द बिलीवर्स यू फॉलो द मॉडल और द एग्जाम्पल ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट.
वहां पे लिखा पॉलुस प्रेरित बताता उदाहरण देता है कि किस तरह प्रभु की तरह हमें अपनाना है.
रिसीव ई वन अनदर एज क्राइस्ट ऑल्सो रिसीव्ड अस टू द ग्लोरी ऑफ गॉड.
वर्स 7 इसलिए जैसे मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुझे ग्रहण किया है वैसे ही तुम एक दूसरे को ग्रहण करो.
सी व्हेन गॉड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट डिजायर्ड टू रिसीव यू एंड मी.
जब प्रभु ने एक दूसरे तय किया कि आपको और मुझे अपनाना है.
व्हाट ही डिड इट.
तो उसने क्या किया.
ही लेफ्ट द हेवनली ग्लोरी.
तब उसने स्वर्गीय महिमा को.
ही वाज डिलाइट ऑफ द हेवन.
वो स्वर्ग में सबके उल्लास.
ही वाज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्शिप ऑफ द एंजल्स.
और सारी आराधना का चिन्ह था.
व्हेन ही थॉट टू रिसीव यू एंड मी टू हिम ही लेफ्ट एवरीथिंग एंड केम डाउन.
जब उसने आपको और मुझे ग्रहण करना था तो सब कुछ छोड़कर नीचे आया.
केम इन द फॉर्म ऑफ अ मैन एंड लिव्ड अमंग अस.
मनुष्य के नाई हमारे बीच में वो रहा.
ही टुक द फॉर्म ऑफ अ सर्वेंट.
एक दास की नाई उसने अपनाया.
सो द पॉल सेज दैट लेट दिस माइंड ऑफ क्राइस्ट बी इन यू.
इसलिए पॉलुस प्रेरित कहता है कि ये मन आपके में होना चाहिए.
दैट इज द माइंड ऑफ Christ we should have when we receive each other.
मसीह का मन हमारे जीवन में होना चाहिए जब एक दूसरे को ग्रहण करते हैं.
ए सैक्रिफिशियल माइंड.
एक बलिदान करने वाला.
रेडी टू गिव अप समथिंग फॉर अनदर पर्सन.
किस दूसरे के लिए कुछ दे देना त्यागना वो.
दैट इज अ मैरिड लाइफ.
ये वैवाहिक जीवन.
इफ यू कैनॉट गिव अप समथिंग फॉर योर वाइफ यू कैनॉट से दैट आई रिसीव्ड हर.
अगर आप किसी चीज को त्याग नहीं सकते अपनी पत्नी के लिए तो आप ये नहीं कह सकते कि उसको अपने अपनाया है.
इफ यू कैनॉट गिव अप समथिंग फॉर द सेक ऑफ योर हस्बैंड यू कैनॉट से आई रिसीव्ड हर.
अपने पति के लिए अगर आप कुछ अपना त्याग नहीं कर सकते तो तब आप ये नहीं कह सकते कि उसको आपने ग्रहण किया.
टू रिसीव वन अदर यू हैव टू सैक्रिफाइस समथिंग.
किसी एक दूसरे को अपनाने के लिए कुछ ना कुछ त्यागना पड़ता है.
आफ्टर द मैरिज फ्रॉम दैट डे ऑन बस दे आर गोइंग टू स्लीप इन द सेम रूम.
और शादी के बाद एक ही कमरे में सोना है.
एंड अंडर द सेम फैन इज़न्ट इट.
एक ही पंखे के नीचे.
देन दे रियलाइज दैट वन हैज़ टू गेट इन द 5 एंड द अदर नीड्स इन 3 द फैन.
तो तब वो उनको ये समझ में आता है कि एक को पंखा पांच पे चाहिए और दूसरे को तीन पे चाहिए.
What to do? Without five, the person cannot sleep. Without three, the other person cannot sleep.
एक व्यक्ति जब तक पंखा पांच पे होता है तब तक वो सो नहीं पाता, दूसरा तीन पे सो सकता है.
By changing, going on, moving the regulator gets spoiled, the problem cannot be solved.
ये रेगुलेटर को बार बार छेड़ने से रेगुलेटर खराब हो सकता है, परंतु उस जो परेशानी है उसका उदाहरण नहीं हो सकता.
It seems to be a simple thing, but you know it is very important.
और ये बहुत छोटी सी चीज है, परंतु आप जानते हैं कितनी महत्वपूर्ण.
Something has to be adjusted, something has to be adopted.
किसी न किसी चीज को छोड़ना है और किसी को अपनाना है.
Some say, okay, my wife needs in three, let me adjust to that.
तो कोई ये कहता है कि मेरी पत्नी को तीन पे चाहिए, तो चलो मैं मानता हूँ.
Willing to sacrifice something.
किसी चीज को बलिदान करना.
If you cannot sacrifice there, you cannot, the conflict will go on.
अगर हम वहां पर किसी चीज के छोड़ नहीं सकते तो ये लड़ाई आगे जारी रहेगी.
Recently I just made this message in a marriage.
एक शादी में भाई ने यही शब्द कहा था.
When I came out of that stage, somebody said, now I understood why our regulator is spoiled.
तो किसी ने ऐसे कहा कि हाँ, अब मुझे समझ आया कि मेरे पंखे का जो रेगुलेटर क्यों खराब हो गया.
I think we have to get adjusted.
इसलिए जरूरी है कि एक दूसरे के साथ.
If you say that I receive one another, we receive one another, there's absolute adjustments are needed.
तो अगर आप ये कहते हैं कि हम एक दूसरे को ग्रहण करते हैं, तो एक दूसरे की परिस्थिति भी समझना जरूरी.
It is not a one day event, let me tell you.
सिर्फ एक दिन की बात नहीं है.
It is a lifelong event.
पूरे जीवन भर की.
It's a constant process of receiving one another.
चलता हुआ समय है जिसके बारे में एक दूसरे का ग्रहण करना.
इट इज नॉट जस्ट वन मोमेंट वी सेड वी रिसीव्ड एंड फॉरगेट. इट इज नॉट लाइक दैट.
एक क्षण नहीं जहां पे हम कहते हैं कि हाँ मैंने रिसीव किया या ग्रहण किया है.
इफ यू वांट टू बी ए सक्सेसफुल मैरिड मैन और अ मैरिड हस्बैंड एंड अ वाइफ, डेफिनेटली देयर इज अ नीड ऑफ अ रिसीविंग वन अनदर, एडजस्टिंग एंड अडॉप्टिंग वन अनदर, अदरवाइज यू कैन नॉट बी एबल टू सक्सेस.
अगर आप एक सफल पत्नी या पति होना चाहते हैं तो ये अपनाना हर बार एक जरूरी चीज है जो आगे हमेशा करती रहे.
एंड द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज अ मॉडल.
और प्रभु एक उदाहरण है.
वी रीड दैट ही लव्ड द चर्च एंड गिव हिमसेल्फ फॉर दैट.
हम जानते हैं कि उसने कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को उसके लिए दे दिया.
सो वी नीड अ सैक्रिफिशियल माइंड, अ लविंग माइंड लाइक द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट.
मन प्रेम करने वाला और बलिदान करने वाला प्रभु के जैसा होना चाहिए.
देन ओनली वी कैन एबल टू रिसीव वन अनदर.
इस तभी हम एक दूसरे को ग्रहण कर सकते हैं.
अनदर थिंग, व्हाई लॉर्ड जीसस क्राइस्ट रिसीव्ड.
क्यों प्रभु यीशु मसीह ने ग्रहण किया.
दैट इज ऑल्सो मेंशन, फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड ही रिसीव्ड.
परमेश्वर की महिमा के लिए ग्रहण किया.
सो व्हाट इज नीडेड व्हेन वी रिसीव इज दैट इट शुड ब्रिंग ग्लोरी टू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट.
जब हम एक दूसरे को अपनाते हैं तो उसका मकसद ये होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह की महिमा.
गॉड इज यूनाइटिंग हस्बैंड एंड वाइफ टूगेदर एज अ फैमिली फॉर हिज ग्लोरी. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट.
जब पति पत्नी को एक परिवार की नाई जोड़ता है परमेश्वर, तो उसकी महिमा होना बहुत जरूरी.
वेदर माई यूनिटी और आवर कमिंग टूगेदर ब्रिंग ग्लोरी टू गॉड और नॉट.
क्या हमारा इकट्ठा होना परमेश्वर की महिमा करता है कि नहीं.
गॉड्स अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिंगिंग फैमिली, फॉर्मिंग फैमिली इज फॉर हिज ग्लोरी.
परमेश्वर का जो मकसद है वो ये परिवार कर बनाने का, उसकी महिमा होनी चाहिए.
ग्लोरी ऑफ गॉड शुड ड्वेल इन आवर होम.
परमेश्वर की महिमा हमारे जगह में, घरों में होनी चाहिए.
द पीपल ऑफ इसराइल व्हेन दे वर ट्रैवलिंग इन द विल्डरनेस.
इसराइली लोग जब मरुभूमि में सफर कर रहे थे.
वी सी द ग्लोरी ऑफ गॉड वॉज अपियर्ड इन द मिडस्ट ऑफ देम.
उनके बीच में परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है.
एंड दैट इज द पर्पस फॉर गॉड कॉल्ड देम आउट.
सॉरी,
दैट इज द पर्पस फॉर विच गॉड हैज कॉल्ड देम आउट.
और इसलिए उसने उनको सबको बुलाया था माउंट में.
एंड इन द हॉट सीजन, इन द सन, व्हेन द हॉट सन, वी सी दैट इट वाज लाइक ए क्लाउड दैट गिव शेड टू देम.
और एकदम गर्मियों में हम जानते हैं कि कड़क धूप के नीचे एक बादल की नाई परमेश्वर की महिमा थी.
ड्यूरिंग द डार्क डेज दैट वॉज ए इल्यूमिनेटेड, इट वॉज लाइक ए पिलर ऑफ फायर टू देम.
और अंधकार में वो एक रोशनी का स्तंभ था.
इट्स व्हेन द ग्लोरी ऑफ गॉड ड्वेल्स अपॉन अवर होम इट इज लाइक दिस.
और जब हमारे घरों पे परमेश्वर की महिमा रहती है, इस प्रकार से रहती
है. इट इज लाइक द क्लाउड अपॉन अस सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हीट ऑफ द फैमिली लाइफ.
और परमेश्वर परिवार की गर्मी से, जीवन की गर्मी से एक बादल की नाई हमें ढकता है.
एंड वेन वी पास थ्रू द डार्क डेज इन अवर फैमिली लाइफ इट विल इल्यूमिनेट अस, द ग्लोरी ऑफ गॉड इल्यूमिनेट्स एंड लीड्स अस.
जब हम पारिवारिक रूप से एक अंधकारमय जीवन से गुजरते दिनों से गुजरते हैं तो एक रोशनी का स्तंभ परमेश्वर की महिमा.
सो मेक इट श्योर द ग्लोरी ऑफ गॉड शुड नॉट डिपार्ट फ्रॉम आवर होम.
इसलिए हमें पूर्ण रूप से चेष्टा करनी चाहिए कि परमेश्वर का जो महिमा है.
नेवर इट शुड हैपन टू एनी वन ऑफ अस दैट एन इकाबोध इज बोर्न इन आवर फैमिली.
और ये कबोध हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए.
इकाबोध मींस ग्लोरी डिपार्ट.
और इसका इकाबोध का मतलब है कि परमेश्वर की महिमा चली गई.
दैट शुड नेवर हैपन इन आवर फैमिली लाइफ.
हमारे पारिवारिक जीवन में ऐसा होना नहीं.
गॉड इंटेंडेड इन आवर फैमिली लाइफ दैट वी शुड रिसीव वन अनदर एंड इट इज फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड.
हम परमेश्वर चाहता है कि हम अपने पारिवारिक जीवन में एक दूसरे को ग्रहण करें और ये परमेश्वर की महिमा के लिए हो.
लेट द माइंड ऑफ क्राइस्ट बी इन अस.
तो हमारे बीच में परमेश्वर प्रभु का मन होना चाहिए.
As I told you, the receiving one another is not just an oral statement, it is a practical experiential thing.
सिर्फ बोलने की चीज नहीं है परंतु एक दूसरे को ग्रहण करने का जो चीज है वो हमारे जीवनों में दिखाई देनी चाहिए.
Another terminology the Bible uses for that is cleaving unto.
और दूसरा शब्द जो है वो जो वचन में है वो एक दूसरे से चिपकना.
When two people are receiving each other, they are cleaved together.
जब एक दूसरे को ग्रहण करते हैं तो उसका मतलब एक दूसरे से जुड़ जाना.
That is glued together.
एक गोंद की तरह जुड़ना.
Which cannot be separated at all.
जो कभी अलग नहीं किया जा सकता.
It is an emotional binding.
एक धार्मिक मानसिक रूप से बंधना.
So that is what God is expecting in a marriage.
शादी में परमेश्वर ये हमारे से चाहता है.
रिसीविंग वन अनदर.
एक दूसरे को ग्रहण करना.
सो बाइबल इज सो ब्यूटिफुली नरेटेड द फर्स्ट रेफरेंस वेयर सेज दैट इट इज रिसीविंग वन अनदर एक्सेप्टिंग वन अनदर फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड.
पहली बार जब शादी का शब्द आता है तो वहां पर ये दिखाते हैं कि इकट्ठा करना ग्रहण करना कितने परमेश्वर की महिमा की.
नाउ लेट मी टर्न टू द सेकंड वर्ड विच इज यूज. सेकंड टाइम द वर्ड मैरिज इज यूज.
दूसरी जगह कहां ये शब्द शादी यूज किया है वो
दैट इज यूज इन जेनेसिस चैप्टर 34:9.
उत्तरती की किताब 38:9 में ऐसा पढ़ता
है. ओके आई एम टॉकिंग ओनली ऑन द वर्ड बिकॉज आई डोंट वांट टू गो इनटू द कॉन्टेक्स्ट. दैट इज कॉन्टेक्स्ट इज अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट.
सिर्फ शब्द पे ही ध्यान देंगे.
देयर अनदर हिब्रू वर्ड इज यूज्ड फॉर मैरिज.
और वहां पे एक और इब्रानी शब्द शादी के बारे में यूज किया गया.
द फर्स्ट वर्ड इट मीन्स टू रिसीव.
पहला जो शब्द देखा हमने कि एक ग्रहण करना.
ऑफकोर्स इन आवर इंडियन लैंग्वेज ऑल्सो लॉट ऑफ वर्ड्स आर देयर फॉर मैरिज.
और हमारी हिंदी भाषा में कई शब्द हैं शादी के बारे में.
यू नो बट इन विवाह दैट इज वन वर्ड नॉर्मली यूज.
एक विवाह शब्द जो हिंदी में ज्यादा यूज किया जाता है.
एंड अदर वन इज आई डोंट नो वी इन मलयालम वी हैव कल्याण. कल्याणम दैट आई डोंट नो हाउ हिंदी दे यूज इट. हिंदी इज इन मलयालम वी से कल्याण दैट इज मैरिज इज द सेम.
नो
पानी ग्रहण. आई होप यू मे नो पानी ग्रहण इज अ ब्यूटिफुल वर्ड.
पानी ग्रहण
दैट मीन्स रिसीविंग वन अनदर बाय एक्सटेंडिंग द हैंड. दैट इज द मीनिंग ऑफ इट.
पानी ग्रहण का मतलब है एक दूसरे को ग्रहण करना अपना हाथ आगे बढ़ाकर.
एंड देन आई लॉस्ट स्वयंवर. यू गाइस स्वयंवर इज अ टाइप ऑफ मैरिज विच वी सी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट.
स्वयंवर एक और प्रकार की शादी है जो हम हिंदी भाषा में देखते हैं.
सो वी सी दैट देयर आर डिफरेंट सिनोनिम्स आर यूज्ड फॉर मैरिज.
एक ही तरह के कई शब्द शादी के बारे में हम देखते हैं.
सो द फर्स्ट रेफरेंस इज इक्विवेलेंट टू पानी ग्रहण दैट इज रिसीविंग बाय हैंड.
और पहला जो शब्द जहां पे दिखाया गया वो पानी ग्रहण था एक दूसरे को हाथ बढ़ाकर स्वीकार करना.
द सेकंड वर्ड विच इज यूज देयर इन चैप्टर 34:9.
34:9 में जो हम देखते हैं जो शब्द दूसरा शब्द जो
अनदर ग्रीक हिब्रू वर्ड इज यूज.
और दूसरा इब्रानी शब्द यूज किया गया.
द मीनिंग इज दिस वन.
और उसका मतलब ये है
टू गिव
टू देना.
और टू गिव अवे दैट इज द मीनिंग.
दे देना ऐसा मतलब.
दैट मीन्स दैट इज कमिंग फ्रॉम द साइड ऑफ द पेरेंट्स.
और ये जो पेरेंट्स हैं उनकी तरफ से आता है.
दैट मीन्स द पेरेंट्स आर गिविंग अवे द चिल्ड्रन इन मैरिज.
इसका मतलब ये है कि शादी में अपने बच्चों को दे देते हैं.
दिस इज अ सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग दैट हैपन्स एट द टाइम ऑफ मैरिज.
और ये दूसरी खास चीज है जो शादी में होती है.
दैट मीन्स पेरेंट्स ऑल दिस इयर्स दे वर टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रन.
बच्चों के बारे में इतने सालों से वो देख रहे थे
20, 25, 28 साल चिल्ड्रन आर लिसनिंग टू द पेरेंट्स
और अपने पूर्वजों के बारे में सुनते हैं पिता माता पिता के बारे में
मैरिज दे आर गिविंग अवे देयर चिल्ड्रेन
और यहाँ पर वो शादी के समय अपने बच्चों को दे देते हैं
नॉट ओनली फ्रॉम द बॉय साइड
सिर्फ पुरुष की तरफ से नहीं
इवन फ्रॉम द गर्ल साइड दे आर गिविंग अवे फॉर द मैरिज
स्त्री की तरफ से भी वो दे देते हैं शादी
एंड दे आर द न्यूली मैरिड कपल दे आर फॉर्मिंग ए न्यू एंटिटी देयर
और वो एक नई चीज का स्थापना करते हैं जो वैवाहिक जोड़ा
एंड द लिबर्टी शुड बी गिवन टू दिस न्यू कपल टू एस्टैब्लिश देयर होम
और जो नया जोड़ा है उसे ये पूरी आजादी होनी चाहिए कि अपना एक घर बनाने
द पेरेंट शुड नॉट इन्वॉल्व टू मच इन टू देयर फैमिली लाइफ
और उसके उनके नए जोड़े की पारिवारिक जीवन में अपने जो माता पिता उनको ज्यादा घुसना
देयर इज ऑलवेज अ बाउंड्री इन दैट मैटर
और वहां पर एक दीवार होनी चाहिए
इन मेनी ऑफ द फैमिलीज आर गेटिंग स्पॉइल्ड एंड डिस्टर्ब्ड टुडे बिकॉज द पेरेंट्स आर नॉट रेडी टू गिव अवे द चिल्ड्रेन
और कई वैवाहिक जीवन में यही परेशानी ये है कि माता पिता बच्चों को देना नहीं चाहते
दे वॉन्ट टू इंटरफियर विद द फैमिली ऑफ देयर चिल्ड्रेन
अपने बच्चों का जो परिवार है उसमें वो दखल देना चाहते
एंड मेनी ऑफ द फैमिलीज आर गेटिंग स्पॉइल्ड एंड डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ दैट
इसलिए कई परिवार खंडित हो गए
द बाइबल इज वेरी क्लियरली सेज दैट व्हेन यू सेंड योर चिल्ड्रेन इन मैरिज यू गिव अवे लेट देम लीव
और वचन बड़े साफ तरीके से बताता है कि जब अपने बच्चों को शादी कर दी है तो उनको शादी में दे देना
इज वेरी पेनफुल आई नो दैट
कठिन है
आई नेवर एक्सपीरियंस इट होप आई विल एक्सपीरियंस
कि हम दोनों ने एक्सपीरियंस नहीं किया
so,
आगे चल के
बट इट इज पेनफुल डेफिनेटली
परंतु काफी कष्टदायक होगा
एज़ समबडी सेड दैट इट इज लाइक ए कटिंग द अम्बिलिकल कॉर्ड
और ये जो जो बचपन में जो अम्बिलिकल जो
जस्ट ओके
अम्बिलिकल जो कॉर्ड होती है उसको काटना
इट इज लाइक दैट
इस तरह से
आई थिंक वाल्टर स्ट्रॉबर्स्की इन इज ब्यूटीफुल वन ऑफ द वेल नोन बुक आई मैरिड यू ही डिस्क्राइब दिस इवन वेरी ब्यूटीफुली
वाल्टर ट्रोबिस करके जो व्यक्ति है जिसने आई मैरिड यू किताब लिखी थी उसमें अच्छी तरह से लिखा है
एंड ही डिस्क्राइब्स दैट इट इज लाइक द हेन दैट इज ब्रिंगिंग आउट डकलिंग्स
और इससे उसने लिखा है कि जो मुर्गी इस प्रकार के जीवन होता है जैसे मुर्गी बतख के बच्चों को
यू नो व्हेन दे हैचिंग द एग्स नॉर्मली वी टेक द एग्स ऑफ द डक्स एंड कीप अंडर द हेन
और कई बार ऐसा होता है कि बतख के अंडों को लेकर हम मुर्गी के नीचे रख देते हैं
दैट इज अ नॉर्मल प्रैक्टिस
और कई जगह ऐसी चीजें होती
सो आफ्टर 21 डेज द हेन दिस एग्स आर रिलीज्ड एंड ऑल द डकलिंग्स कम्स आउट
और 21 दिनों के बाद वो अंडे फूटते हैं और उसमें से छोटे बतख के बच्चे निकलते हैं
एंड पुअर हेन कैन नॉट अंडरस्टैंड डकलिंग एंड देन दे आर टेकिंग केयर एज इफ इट्स ओन चाइल्ड यू नो
वो मुर्गी ये नहीं समझती कि वो बतख है पर फिर भी उसको बच्चों की तरह देखती
है सो द हेन इज टेकिंग केयर ऑफ डकलिंग्स एंड मूविंग अराउंड इन द फील्ड
और वो खलियान में घूमती है अपने बच्चों को लेकर
वन डे इट हैपेंड द डकलिंग एंड दिस हेन वेंट नियर ए पॉन्ड
और एक पॉन्ड के पास ये बतख और बतख के बच्चे और मुर्गी जाते हैं
You can imagine what will happen.
तो आप सोच सकते हैं कि तब क्या हुआ?
When the ducklings saw the pond in the water, they jumped into the water.
और जब बतख के बच्चों ने वो पॉन्ड को देखा पानी को देखा तो उसमें वो कूद गए
एंड दिस पुअर हेन इज स्टैंडिंग ऑन द शोर एंड जस्ट स्टेयरिंग एट हर
और वो बेचारी मुर्गी किनारे पे खड़ी होकर सिर्फ देख रही है
यू कैन इमेजिन द फीलिंग ऑफ द हेन देयर
और तब आप मुर्गी के बारे में कुछ जो सोच रही है उसके बारे में कुछ सोच
सेड दैट इट इज लाइक दैट सेंडिंग द चिल्ड्रन इन मैरिज
और इस वो कहते हैं कि जो सोच उस मुर्गी की है वाल्टर ट्रोबिस कहता है कि ये अपने बच्चों को शादी में देने की
फीलिंग मे बी देयर इन द हार्ट ऑफ द पेरेंट्स
माता पिता के मन में ये विचार हो सकते हैं
गिविंग अवे द चिल्ड्रन इन मैरिज
अपने शादी में अपने बच्चों को दे देना
सो बाइबल वेरी क्लियरली सेज देयरफॉर द मैन शैल लीव हिज फादर एंड मदर एंड क्लीव अनटू
इसलिए वचन साफ तरीके से कहता है कि पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ जुड़ेगा
सो दिस इज द सेकंड एस्पेक्ट ऑफ द मैरिज लिविंग द पेरेंट्स
और दूसरा जो शादी के बारे में शब्द है या धारणा है वो अपने माता पिता को छोड़ना
समटाइम्स द पीपल थिंक दैट इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर मेन नॉट फॉर सिस्टर्स
और कई बार सोचते हैं कि सिर्फ ये आदमियों के लिए ही है औरतों के लिए नहीं है
बट बट बाइबल सेज
पर बाइबल क्या कहती
आई थिंक आफ्टर आवर मैरिज फ्यू मंथ्स आफ्टर आवर मैरिज
भाई की शादी के कुछ महीनों बाद
इज अबाउट 28 इयर्स अगो इट्स
28 साल पहले
एंड फेलिसिटी केम टू मी एंड सेड दैट आई गॉट अ न्यू रेवलेशन शी टोल्ड मी
बहन फेलिसिटी आई इनके पास आके कहा कि मुझे एक नया प्रकटीकरण हुआ है
व्हाट इज दैट रेवलेशन
तो भाई ने पूछा वो प्रगटीकरण क्या है.
एंड शी सेड दैट नाउ आई रियलाइज फ्रॉम साम 45:10 लाइक दिस.
भजन संहिता 45:10 में ऐसा मैंने सोचा है.
हियर कैन ओ डॉटर एंड कंसिडर एंड इंक्लाइन देन ईयर फॉरगेट ऑल्सो थाइन ओन पीपल एंड थाई फादर्स हाउस.
हे राजकुमारी सुन और कान लगाकर ध्यान दे अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा.
आई थिंक दैट रेवलेशन हैज मेड अ ट्रेमेंडस चेंज इन आवर फैमिली लाइफ.
और ये जो प्रगटीकरण हुआ भाई के व्यवहारिक जीवन में बहुत ही इसने अच्छा कार्य किया.
द वाइफ द सिस्टर शुड रियलाइज दैट दे हैव टू फॉरगेट देयर ओन पीपल एंड देयर ओन फैमिली मेंबर्स.
और बहनों को ये सोचना है कि अपने लोगों को और अपने परिवार को भूलना है.
इट्स वेरी डिफिकल्ट.
बहुत मुश्किल है.
Especially for sisters is very difficult.
बहनों के लिए बहुत ही मुश्किल.
Because they were brought up in a background in a such a way that emotionally they are so much attached to that.
क्योंकि बचपन से ही ऐसे वातावरण में है कि उनको अपने खानदान से बहुत लगाव होता है.
I think my mom has got married 65 years ago. Still now she remembers what she had experienced in her father's house.
भाई की माता जो है 65 साल पहले जो शादी हुई थी फिर भी वो जानती है कि अपने पिता के घर में क्या क्या होता.
Sometimes they go on remembering about.
वो उसके चीजों के बारे में सोचते रहते हैं.
नथिंग रॉन्ग इन रिमेम्बरिंग.
इसमें कुछ गलत नहीं है.
बट डोंट कंपेयर इट विद व्हाट द प्रेजेंट सिचुएशन.
परंतु उसको आज की परिस्थिति से जोड़ना गलत.
इन माय हाउस इट वाज लाइक दैट बट हियर इट इज नॉट लाइक.
मेरे घर में ये था परंतु यहाँ नहीं है.
इन माय हाउस इट वाज लाइक दिस इट इज नॉट हियर लाइक दैट.
इस प्रकार से मेरे घर में था आज यहाँ नहीं है.
इफ यू गो ऑन कंपेयरिंग दैट इट विल होम विल बी हेल. लेट मी.
इस तरह से अगर आप जोड़ते रहोगे तो अपना जो घर है वो बहुत एकदम नर्क समान हो जाएगा.
You have to forget what happened.
वो भूलना है कि क्या हो चुका है.
Then only you see that the king will love you.
तभी आप जानते हैं कि जो राजा है वो आपसे प्रेम
Many
करेगा.
Of the problems in the home is because of these things.
कई बार इस चीज जो परेशानियां घर में इन चीजों के बारे में.
The wives they are not ready to forget the things.
जो पत्नियां हैं वो भूलना नहीं चाहती.
Some are forgetting of parents and all is difficult. That's understandable.
अपने परिवारजनों को भूलना मुश्किल है.
We should not forget. We should consider them. No doubt.
हमें पूर्ण रूप से भूलना नहीं है पर फिर भी याद रखना है.
बट सम आर इन अ सच ए वे दे आर नॉट इवन फॉरगेटिंग देयर ओन डोमेस्टिक एनिमल्स एट होम. दैट्स द थिंग.
कई ऐसी होती बहनें जो अपने जानवरों को जो पिता के घर था वहां पे जानवरों को भी नहीं भूलती.
आफ्टर द मैरिज.
शादी के बाद.
आफ्टर वन और टू वीक्स द हस्बैंड रियलाइज दैट द वाइफ इज इन द नाइट इन द वन द स्लीप शी सेइंग माय हमू लाइक दैट.
शादी के एक दो सप्ताह बाद जो पति है वो ये सोचता है कि अरे सपने में जो उसकी पत्नी है रात को माई हम्मू मेरा हम्मू करके बोलती है.
सो ही वॉज वंडरिंग वाई शी इज टेलिंग एवरी टाइम माई हम्मू.
मेरा हम्मू वो कौन है. वो पति जरा सोच में पड़ जाता है.
शी थॉट ऑफ मेकिंग एन एनक्वायरी अबाउट इट.
तो वो सोचता है कि मैं इसके बारे में पता करता हूँ क्या.
देन व्हेन द एनक्वायरी वॉज मेड ही अंडरस्टूड दैट इज द नेम ऑफ अ कैट इन हर हाउस.
तब सब कुछ जानने के बाद उसको पता चलता है कि उसके बाद जो अपने माता पिता के वहां एक बिल्ली थी उसका नाम हम्मू था.
यू अंडरस्टैंड.
तो आप समझ सकते हैं.
पीपल आर वेरी मच सो मच अटैच्ड एंड इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम एट होम.
इस तरह की चीजें कई बार घर में बहुत सारी मुसीबतें पड़ी.
इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली दैट द पेरेंट्स शुड गिव अवे द हस्बैंड एंड वाइफ ऑल्सो शुड बी विलिंग टू लीव एंड फॉर देयर ओन होम.
सिर्फ यही जरूरी नहीं कि माता पिता बच्चों को छोड़ दे परंतु पति पत्नी को भी ये होना चाहिए कि आप उनको भी छोड़ना है.
दे शुड नॉट पेरेंट्स शुड नॉट इन्वॉल्व अननेसेसरली इन टू द फैमिली लाइफ ऑफ द चिल्ड्रन.
और अपने बच्चों के वैवाहिक जीवन में सिर्फ माता पिता को दखल देना जरूरी नहीं.
एंड ऑल्सो चिल्ड्रन शुड नॉट कम्युनिकेट अनवांटेड थिंग्स टू दम एंड क्रिएट प्रॉब्लम.
और हर चीज को अपने माता पिता को बताने की बच्चों को भी जरूरत नहीं.
आफ्टर द मैरिज सम होम्स इट हैपेंस लाइक दिस.
कई बार ऐसे कई घरों में शादी के बाद ऐसा होता
and
है.
एंड पेरेंट्स विल आस्क हाउ इज गोइंग ऑन इन द न्यू प्लेस.
तो माता पिता जब पूछते हैं कि नई जगह में कैसा चल रहा है.
मोबाइल्स आर देयर ईमेल्स आर देयर सो कम्युनिकेशन इज वेरी फास्ट.
अभी आजकल मोबाइल और ईमेल से एक दूसरे के बारे में बताना जरूरी.
Each and everything they communicate to the parents.
जो कुछ भी हुआ है वो अपने माता पिता को बता देते हैं.
And really creates a mess at home.
और बहुत गंदी चीज घर पे हो जाती है.
Let me tell you, unwanted thing don't communicate to them.
जो जरूरी नहीं है उनको बताने की जरूरत नहीं है.
You have to bear each other.
एक दूसरे के साथ रहना है.
The word marriage, you know what is the meaning of that?
Shadi shabd ka matlab kya?
In vivah, that is the word.
Vivah ka matlab kya?
Indian one. We means, vivah actually means bearing the burden, that's the meaning.
Uska matlab hai, vivah ka matlab hai ki ek cheez.
Vivah means vahi kya, that is a bearing it.
Kisi cheez musibat ko lena.
And somebody told me, vivah means a special type of burden. It's not a usual type of burden. It's a special type of burden.
Iska matlab hai ki khas tarike.
Oh, that you never understood that vivah means it is a burden carrying the burden, isn't it?
Yeah, आपने कभी सोचा नहीं होगा कि विवाह मतलब है कि खास बोझ को लेके जाना?
The Varghese Kurian was sharing about that. When I said, I thank brother Varghese Kurian. I said, thank you for this meaning. He explained it very well, nicely there.
जब भाई Varghese Kurian ने ये शब्द कहा, तो भाई ने उसको thank धन्यवाद दिया कि आपने बड़ी अच्छे तरीके से विवाह शब्द का मतलब
समझाया. I inquired and I just went into the dictionary and I understood that it is not just a burden carrying the burden, is a special type of burden.
जब भाई ने शब्द को देखा तो उसमें पता चला कि विवाह शब्द जो है उसमें जो भार है वो खास तरीके का भार.
That cannot be separated. That means you have to bear it.
उसको अलग नहीं किया जाता.
You cannot throw it out.
उसको फेंक नहीं सकते.
You have to carry every day.
वो बोझ को हर दिन उठाना है.
Yeah, carry the cross and follow. Daily.
क्रूस को उठाकर हर दिन जाना.
That is marriage.
इसका मतलब शादी है.
So we see that don't try to disperse it, you have to bear it, you have to follow it.
Isko bikherna nahi hai, usko uthake bojh ko chalna.
So the second aspect of the marriage is comes leaving the parents and cleaving. There's a leaving.
Dusra vivah ka jo shabd ka matlab hai, apne mata pita ka chhod kar dusre se jodna.
To give away.
Dena.
Now, comes to the third word, the third time the Bible speaks about the marriage.
विवाह के बारे में तीसरी चीज वचन क्या कहता है?
The third time the word appears in not in Genesis, it is in Exodus.
निर्गमन की किताब में तीसरी बार विवाह शब्द इस्तेमाल
किया. Exodus chapter 21 verse 10 we see the reference about that.
21वें अध्याय और 10वीं आयत में उसका शब्द का मतलब.
There we see again the marriage, the word is there.
और वहाँ पे शादी विवाह शब्द इस्तेमाल किया है.
And that word is entirely different from the two previous words.
और ये जो शब्द का मतलब है एकदम ही अलग पहले दो शब्दों से.
This is the third different word used about marriage.
और तीसरे प्रकार का विवाह के बारे में शब्द इस्तेमाल किया.
The meaning of the Hebrew word there means to dwell together. That's the meaning.
और जो इब्रानी शब्द यहाँ इस्तेमाल किया उसका मतलब है एक दूसरे के साथ इकट्ठा होकर रहना.
Dwelling together is the consummation of the marriage.
और एक शादी का जो अंत होता है या उसमें शादी का मकसद होता है वो एक दूसरे के साथ रहना.
Therefore he shall leave his father and mother and cleave unto her and they shall be one body.
इसलिए वो अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ जुड़ेगा और वो एक शरीर होंगे.
या दे शैल बी वन फ्लैश, दे शैल बी वन बॉडी.
एक शरीर होंगे वो.
सो देर वी सी दैट दिस वन बॉडी कंसेप्ट, वन फ्लैश कंसेप्ट, दैट इज ड्वेलिंग टूगेदर इन यूनिटी.
इसका मतलब ये होता है कि एक इकाई में एक साथ रहना.
दिस इंक्लूड द फिजिकल यूनियन.
और ये शारीरिक संबंध को भी इस्तेमाल करता
है. दैट इंडिकेट्स अबाउट द इंटीमेसी बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ.
एक पति और पत्नी में क्या नजदीकी होती है उसके बारे में बताता
है. पीटर चैप्टर 3 वर्स 7 वी सी दैट पीटर एक्सॉर्ट द हस्बैंड्स, हस्बैंड्स डल विद अंडरस्टैंडिंग, डल विद योर वाइफ विद अंडरस्टैंडिंग.
पहला पत्रस 3:7 में लिखा है कि समझ के साथ अपनी पत्नी के साथ रहो.
दैट मीन्स टू डल टुगेदर, प्रैक्टिस इंटीमेसी, दैट इज व्हाट द पीटर मीन्स.
इसका मतलब है एक दूसरे के साथ शारीरिक रूप से भी रहना.
सो इन अ मैरिड लाइफ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट हस्बैंड एंड वाइफ शुड लिव टुगेदर.
बहुत जरूरी है शादी के व्यवहारिक शादी में कि पति पत्नी को एक साथ रहना.
समटाइम्स द हस्बैंड इन ओमान.
कई बार होता है कि जो पति है ओमान में होता है.
एंड द वाइफ इज इन उगांडा.
और पत्नी है युगांडा में होती.
एंड चिल्ड्रन इन ऊटी.
और जो बच्चे हैं वो ऊटी में होते हैं.
दिस इज रियल. मेनी मेनी केरला होम्स आर लाइक दिस.
केरला में कई घर हैं जहां ऐसा है.
दैट इज एब्सोल्युटली अनस्क्रिप्चरल.
और ये बहुत साफ तरीके से वचन में ऐसा
नहीं है. बाइबल इज नेवर परमिटिंग दैट.
और वचन इस तरीके किसी का भी आधार नहीं है.
इफ यू आर प्लानिंग टू मैरी, मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू डल टूगेदर.
अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हैं तो यह जरूरी है आप दोनों एक साथ रहें.
इफ यू आस्क देम हाउ मेनी इयर्स यू आर मैरिड.
आप उसको पूछे कितने साल आप शादी हुई?
25 years, 30 years.
25-30 साल.
But how many months you stayed together?
कितने महीने साथ रहे?
Maybe 30 months or 12 months, because one year, one month. That is the
हो सकता है 30 महीने या 12 महीने.
Sometimes people comes once in 2 years they come.
कई बार होता है कि 2 साल में एक बार ही व्यक्ति आता है.
And the life continues in telephone. And that's all.
और टेलीफोन द्वारा ही जिंदगी चलती है.
And the problems of the families are multiple. You cannot count it. So that must be.
और व्यवहारिक जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ जाती
हैं. So the Bible very clearly says that husband and wife should dwell together in unity.
परमेश्वर का वचन बड़े साफ तरीके से कहता है कि पति पत्नी को एक साथ रहना
है. Well, as somebody said that in a young age they are separated and living in different places.
कई बार किसी ने ऐसा कहा है कि छोटी उम्र में ही अलग होकर अलग अलग जगह में रहते हैं.
When the old age, when they have to massage and all oil in the old age massaging, at that time they come together.
तो जब वृद्धावस्था में जब उनको मसाज जरूरी है तब इकट्ठा होते
हैं. I think that is not the Bible principle of marriage.
ये जो वचन है उसमें ऐसा नहीं है.
मैरिज वेरी क्लियर, बाइबल इज वेरी क्लियर अबाउट द मैरिज.
वचन के वचन में शादी शब्द के बारे में बहुत सरलता से साफ तरीके से बताया. एक साथ रहना,
प्रैक्टिस इंटीमेसी,
एक साथ शारीरिक रूप से रहना.
दीज आर द 3 इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ ए सक्सेसफुल मैरिज.
एक सफल शादी के बारे में 3 महत्वपूर्ण चीजें ही हैं.
फर्स्ट वन इज क्लीविंग,
पहला जुड़ना.
द सेकेंड वन इज लिविंग,
दूसरा छोड़ना.
एंड थर्ड वन टू बिकम वन फ्लैश,
और तीसरा एक शरीर होना.
व्हेन आई स्टडीड आई रियली थैंक गॉड द ब्यूटिफुल वे द थिंग्स आर रिवील्ड इन द गॉड्स वर्ड.
भाई ने जब अध्ययन किया तो उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद दिया कि किस तरह से अच्छी तरीके से ये शब्द के शब्द
इन वन वर्स ऑल दिस थिंग्स 3 things आर मेंशन्ड.
एक ही वाक्य में सब तीनों चीजें हैं.
बट इन द कोर्स ऑफ टाइम गॉड इज एक्सपाउंडिंग, द होली स्पिरिट इज एक्सपाउंडिंग मोर अबाउट द सेम ट्रूथ.
और जिस तरह समय निकलता है पवित्र आत्मा सब चीजों के बारे में और नए वचन में भी बताया गया है.
दैट इज व्हाई पीटर सेज टू द हस्बैंड, हस्बैंड्स ड्वेल टुगेदर विद योर वाइफ इन अंडरस्टैंडिंग.
इसलिए पत्रस कहता है कि पतियों को कि अपने पत्नियों के साथ रहो.
मेक ए हाउस टुगेदर,
अपना घर एक साथ बनाइए.
लिव अंडर द सेम टेंट,
एक तंबू में साथ रहो.
दैट इज द मीनिंग ऑफ इट.
इसका मतलब ये.
सो मे गॉड हेल्प अस टू एग्जामिन आवर ओन फैमिलीज.
परमेश्वर मदद करे हमें अपने पारिवारिक जीवन को
एंड सी आवर फैमिलीज आर सक्सेसफुल और नॉट,
देखने के लिए कि हमारा पारिवारिक जीवन सफल है कि नहीं.
इफ आवर फैमिलीज नीड टू बी सक्सेसफुल ऑल दिस 3 things हैज टू कम.
अगर हमारे पारिवारिक जीवन सफल होना है तो तीनों चीजें एक साथ होनी है.
मे गॉड ब्लेस आवर होम्स एंड आवर फैमिलीज इन द कमिंग डेज.
परमेश्वर हमारे घर और परिवार पे आशीष दे.
मे गॉड ब्लेस दिस वर्स्ट.
परमेश्वर हमारे वचन पे आशीष दे.